ओम शांति। साक्षी और साथी, ब्राह्मण जीवन में ये सर्वोच्च स्थिति है। हम सभी ब्राह्मण ऐसी श्रेष्ठ स्थिति प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। बाबा मुरली में कहते हैं, साक्षी दृष्टा बनो। साक्षी दृष्टा का सरल भाव यही है कि जो भी मेरे सामने घटित हो रहा है उसको मैं बिना प्रभाव देखता रहूं। साक्षी दृष्टा में तीन बातें हैं, दृष्टा, दृष्टि और दृष्टांत। आत्मा दृष्टा है और आंखों रूपी खिड़कियों से माध्यम से हम दृष्टि लेते हैं, देते हैं। और ऐसी साक्षी दृष्टा का जो बहुत सुंदर अभ्यास करते हैं उसका दृष्टांत देते हैं, उदाहरण देते हैं। ब्रह्मा बाबा और मम्मा हमारे सामने उदाहरण मूर्त हैं, क्योंकि मम्मा बाबा ने ऐसी श्रेष्ठ स्थिति, साक्षी दृष्टा स्थिति की बहुत सुंदर अनुभूति की थी। तो आप सभी यहां इसलिए आए हैं, इस साक्षी और साथीपन की स्थिति का अनुभव करने के लिए। यही हमारी सच्ची साधना है, यही हमारा पुरुषार्थ है। लेकिन गृहस्थ में रहते हुए, कारोबार संभालते हुए ऐसी साक्षी दृष्टा स्थिति बनाने के लिए कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें मदद कर सकती हैं, उस पर हम थोड़ा विचार विमर्श करेंगे। पहली बात, साक्षी दृष्टा स्थिति की अनुभूति बढ़ाने के लिए हमेशा हमारे दिल में वैराग्य वृत्ति की भावना पनपती रहे, क्योंकि जितना इस पुराने दुनिया से वैराग होता है उतना बाबा से अनुराग बढ़ता है, प्यार बढ़ता है। बाबा मुरली में कहते हैं, योगियों की आंख किसी चीज में डूबती नहीं है। तो ये पुरानी दुनिया है, असार संसार है, इस पुरानी दुनिया से हम क्या अनुराग रखें, क्या प्यार रखें। तो ऐसा जब हम समझते हैं तो साक्षीपन की स्थिति ऑटोमेटिक अनुभव करने लगते हैं। या होगी साक्षी स्थिति या होगी साथीपन की स्थिति। जब साथीपन की स्थिति नहीं है तो साक्षी अवस्था हमारी ऑटोमेटिक रहती है। दूसरी बात, समय का ज्ञान सदा बुद्धि में रखना। बाबा ने स्पष्ट कहा है, अभी अंतिम समय का अंतिम समय चल रहा है, इसलिए उड़ती कला की अनुभूति हमें करते रहना है। उड़ती कला की अनुभूति तब होगी जब हम इस संसार से डिटैच हो गए। अगर ड्रामा अनुसार हम साक्षी अवस्था बनाएंगे तो मार्क्स ड्रामा को मिलेंगे, हमें नहीं मिलेंगे। इसलिए हमें समय के पूर्व ऐसे श्रेष्ठ स्थिति की अनुभूति को बढ़ाते जाना है। तीसरी बात है, हमारे दिल में हमेशा वानप्रस्थ स्थिति की अनुभूति ताजी रहे। वर्तमान समय कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, सबकी वानप्रस्थ स्थिति है। ये ड्रामा का अंत कब होगा किसी को पता नहीं है। इसलिए वाणी से परे जाना, इसको वानप्रस्थ स्थिति कहते हैं। हमने देखा ब्रह्मा बाबा हमेशा वाणी से परे रहते थे, परिणाम स्वरूप साक्षी अवस्था उनकी नेचुरल रहती थी। हमेशा बुद्धि में एक बात रखें कि इस रंग मंच पर मैंने बहुत अच्छा पाठ बजाया है, अभी मुझे परमधाम रूपी घर वापस जाना है। इसलिए वानप्रस्थ स्थिति की अनुभूति को बढ़ाते जाना है। चौथी बात है, साक्षी दृष्टा की अनुभूति बढ़ाने के लिए हमेशा अनुभव करें कि ये संसार कब्रस्थान बना हुआ है, स्मशान भूमि जैसा बना हुआ है, क्योंकि सभी देह के वाहन में रहते हैं, देह के अभिमान में रहते हैं। तो जैसे कि यह संसार कब्रस्थान ही बना है, इस कब्रस्थान से क्या दिल लगाएं? एक बार ब्रह्मा बाबा को बॉम्बे में रमेश भाई जी कार में ले जा रहे थे कहीं, तो बाबा कार में बड़े उपराम से बैठे थे। तो भाई जी ने कहा, बाबा देखो तो सही, बॉम्बे का चकाचौंध कैसी सुंदर माया नगरी है ये। बाबा ने कहा, बच्चे ये तो मुर्दों की दुनिया है, इसको क्या देखना है, किसी को आत्मा का ज्ञान नहीं, सभी देहाभिमान में घूम रहे फिर रहे हैं। कब्रस्थान में किसी की जाने की दिल स्वेच्छा से नहीं होती है, तो ये पुराने संसार से क्या दिल लगाएं? पांचवी बात है, पत्थर से दिल लगाया और सीने में चोट खाई। दुनिया वाले कहते हैं पत्थर बुद्धि लोग इस संसार में हैं, पत्थर मारते रहते हैं। इस पत्थर बुद्धि वालों की दुनिया से क्या प्यार रखें? अगर हम इनसे प्यार रखते भी हैं, हमारे दिल का खिंचाव उनके तरफ होता भी है, तो हमें केवल दुख और अशांति ही मिलती है। सभी आलोचना करते रहते हैं, सभी मतलब से बातें करते रहते हैं, और हमें अपने अनुसार वो यूज करते रहते हैं। ऐसी दुनिया से क्या दिल लगाएं? क्या साथीपन की अनुभूति इस दुनिया से करें? तो ऐसी जब दिल में फीलिंग होती है तो स्वतः ही साक्षी अवस्था हमारी बनती जाती है। छठवी बात है, कहते हैं एक साधे सब सधे, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक एक चीज की प्राप्ति के लिए हम प्रयास करते रहेंगे तो बहुत समय लगेगा। हमें अभी सर्व प्राप्तियों का भंडार बाबा मिला हुआ है। एक को अगर हम साध लेते हैं, उनसे हमारा बुद्धियोग जोड़ लेते हैं तो सर्व प्राप्तियां हमें स्वतः ही मिलती है। इसलिए हमें अपनी बुद्धि को इधर उधर नहीं भटकाना है। सातवीं बात है, बाबा कहते हैं ये पुरानी दुनिया जड़ जड़ीभूत हो चुकी है। जैसे पुराना मकान होता है उसको खंडर कहते हैं, पुराने मकान में रहना अर्थात जान की जोखिम लेना, कभी भी वो गिर सकता है, कभी भी मर सकते हैं। तीन से जड़ जड़ीभूत दुनिया में किसी से दिल लगाना अर्थात जान की जोखिम लेना, इस जड़ जड़ीभूत दुनिया से क्या मोह रखें। बाबा स्पष्ट कहते हैं झूठी माया झूठी खाया झूठा सब संसार। माया झूठी है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। सतयुग त्रेतायुग में तो नाम निशानी भी नहीं उसका। और ये जो विकार, ये झूठे विकार हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये पांच विकार केवल पांच दिव्य गुणों के अभाव से जागृत होते हैं। तो अस्तित्व है पांच दिव्य गुणों का, ये पांच विकार ये झूठे हैं। और ये झूठी काया, काया ये विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। आत्मा सत्य है, शरीर तो असत्य है। तो ये सारा संसार ही झूठा है, विकारों का ही बोलबाला है। ऐसे संसार से हम क्या दिल लगाएं। तो जब ये बातें हम रियलाइज करते हैं तो साक्षी अवस्था हमारी स्वतः ही बनती है। अभी सवाल ये उठता है, साक्षी अवस्था किसको कहते हैं? उदाहरण देता हूं, दिल्ली में कितने देशों के राजदूत रहते हैं। नेपाल का भी राजदूत दिल्ली में रहता है। वो भारत में कुछ ऊंची नीची बात होती है, आर्थिक व्यवस्था में उतार चढ़ाव होता है, उनको कोई लेना देना नहीं है, उन पर उसका कोई असर नहीं होता है। लेकिन नेपाल में अगर कुछ ऊपर नीचे बात होती है, दंगा फसाद होता है, तो नेपाल का जो राजदूत होगा उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाई देगी, क्योंकि वो समझता है मेरा भविष्य नेपाल से जुड़ा हुआ है, भारत से नहीं। भारत को केवल वो साक्षी होके देखता है। तो ऐसे ही हमें इस पुरानी दुनिया को साक्षी होके देखना है। हमारा लेना देना अभी परम धाम से है और नई दुनिया से है। इस पुरानी दुनिया से जो लेना देना है वो समाप्त हो चुका है। तो इसको हमें साक्षी देखना है तो साक्षी स्थिति ऑटोमेटिक होती है। वर्तमान समय जैसे परम धाम में शिव बाबा बैठे हैं, सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा बैठे हैं और ऊपर से इस साकारी दुनिया को देख रहे हैं साक्षी होकर। मेरे बच्चे अपना पाड़ बजा रहे हैं, चाहे बीके हैं चाहे नॉन बीके हैं, सारे मेरे बच्चे हैं, अपना अपना पाड़ बजा रहे हैं। किसी को दुख की अनुभूति हो रही है, किसी की सुख की अनुभूति हो रही है, बाबा एकदम डिटैच है, साक्षी है। जब बाप दादा आते हैं, हमने कई बार देखा 25,000 की सभा डायमंड हॉल में है और बाप दादा को दादी जी भोग खिलाती हैं, उस समय बाबा भोग खा रहे हैं और बच्चों को साक्षी होकर देख रहे हैं डायमंड हॉल में बच्चे क्या कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, जोर से बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, साक्षी होकर देख रहे हैं। लेकिन कभी कभी हाथ में ड्राई फ्रूट्स मुट्ठी में लेकर बच्चों के तरफ वो फेंकते थे, माना बच्चों के साथी बनते थे, तो बच्चों को उसकी अनुभूति होती थी साथीपन की। और जब बाबा परमधाम वापस जाते हैं, उस समय आप बाबा के चेहरे को देखो, बाबा बिल्कुल डिटैच है, बिल्कुल साक्षी है, सबके साथी थे और अभी एकदम सबसे साक्षी है। तो ये प्रैक्टिकल हमने बाबा को देखा, बाबा के इसमें देखा पार्ट में, तो हमें ये बात सीखनी है। हमारा घर अभी सूक्ष्म वतन है, टाइटल लेके हम घूम रहे हैं ब्रह्मा कुमारी फलानी, ब्रह्मा कुमार फलाना, तो हमारा बाप हो गया ब्रह्मा और जहां मेरा बाप रहता है वो मेरा घर कहलाता है। तो फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करते हुए हमें वहां से अपने पार्ट को और अन्य आत्माओं के पार्ट को साक्षी होकर देखना है, बड़ा मजा आता है। कोई झगड़ा होता है दो तीन लोगों का, कोर्ट में केस जाती है, जज पूछता है इसका साक्षी कोई है, इसका चश्मुद्दीन कोई है, किसने देखा है इसको, तो कहते ये साक्षी हैं। तो साक्षी जो व्यक्ति होता है उन्होंने वो झगड़ा देखा लेकिन डिटैच होकर देखा, उसका उस पर कोई असर नहीं हुआ है। तो ऐसी साक्षी स्थिति की अनुभूति को हमें भी बढ़ाना है, अपने पार्ट को भी साक्षी होकर देखना है और सभी आत्माओं के पार्ट को साक्षी होकर देखना है, साथी होकर नहीं, साक्षी होकर देखना है। एक बात बुद्धि में रखें, जितना साक्षी उतना साथी बाबा का अनुभव कर सकते हैं, जितना उतना हिसाब है। तो जितना साक्षी होते हैं उतना साथीपन की अनुभूति हमारी बढ़ती जाती है। बाबा को हम साथी अनुभव करते हैं, बाबा की याद हमें सहज आती है और बाबा के साथ रहते रहते हम अपने संपूर्णता की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। अभी दो बातों पर हमें गहराई से विचार सागर मंथन करना है कि बाबा हमें कहते हैं मुझे याद करो, क्यों बाबा को याद करने की जरूरत है? दूसरी बात है बाबा कहते हैं मेरे साथ रहो, मुझे साथी बनाओ, क्या जरूरत है बाबा को साथी बनाने की? इस बात को अच्छी तरह से हमें समझना होगा। सबसे पहली बात है बाबा को हमें याद क्यों करना जरूरी है, उसके लिए पहली बात है केवल बाबा ही इस जन्म मरण के चक्कर से न्यारे हैं, इस ड्रामा को साक्षी होकर देखते हैं, डिटैच है, ड्रामा का ज्ञान केवल उनके पास है। दूसरी बात एवर प्योर पतित पावन, केवल बाबा शिव बाबा ही है, दूसरा कोई नहीं है। तीसरी बात आध्यात्मिक शक्तियों के सोर्स केवल बाबा हैं। आत्माओं को याद करते हैं तो हमारी ऊर्जा खर्च होती है, क्योंकि ये सिद्धांत है, एनर्जी का जो फ्लो होता है वो हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट की तरफ होता है, जब हम बाबा को याद करते हैं तो बाबा सोर्स होने के कारण हमें शक्तियां मिलती हैं, और जब हम किसी व्यक्ति वैभव को याद करते हैं तो हमारी शक्तियां खर्च होती है, जमा नहीं होती है। इसलिए हमें बाबा को याद करके आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना जरूरी है। अभी बाबा को साथी क्यों बनाएं? क्योंकि जिसके साथ हम रहते हैं उनके जैसा स्वतः ही हम बनते जाते हैं। दुनिया में कोई किसी को साथी बनाता है, अपना साथी, तो कुछ बातें उसमें टटोल कर देखता है, कौन सा मुझे साथी बनाना है। उसमें खास पांच बातों को याद करता है, वो चेक करता है। पहली बात, मेरा साथी बहुत सुंदर हो। बाबा से बढ़कर इस संसार में कोई भी सुंदर नहीं है, सुंदरता का वो सागर है। सारे संसार की आत्माओं को सुंदर बनाने का ठेकेदार है, तो सबसे सुंदर केवल बाबा ही है, उनको साथी बनाना अति आवश्यक है। दूसरी बात है, मेरा साथी सबसे कल्याणकारी हो, मेरा हमेशा कल्याण चाहने वाला हो। इस संसार में केवल बाबा ही बेहद के कल्याणकारी हैं, कल्याण के वो सागर हैं। आत्माएं जो है वो हद के कल्याणकारी हैं, कल्याण चाहते हैं लेकिन हद में है वो। बेहद अर्थात सदा कल्याणकारी केवल बाबा ही इस संसार में मेरा है। तीसरी बात, मेरा साथी हमेशा कोई भी यही समझता है सत्यवादी हो, झूठा नहीं हो। झूठे बोलने वाले व्यक्ति से कोई प्यार नहीं करता है, उससे दूर भागते हैं। जो सत्यवादी होता है, सत्यता को अपनाकर चलता है, उसके समीप लोग आते हैं, उसका व्यवहार सबको अच्छा लगता है, उसको सभी अपना साथी बनाने में दिलचस्पी रखते हैं। तो सत्यता का वो सागर है, सारे संसार को सत्यता की शक्ति प्रदान करने वाले हैं। इसलिए लोगों ने भावना में आकर कह दिया है, सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। चौथी बात, साथी बनाना अगर कोई चाहता है तो देखता है इसके पास माल कितना है, धन संपत्ति किसकी कितनी है इसके पास। अब बाबा से बढ़कर किसी के पास इतना माल नहीं है। बाबा कहते हैं इतने खजाने मेरे पास हैं, सारे संसार को अगर मैं बांट दूं तो भी वो खूटते नहीं हैं, क्या मैं इन खजानों का करूं, ये सारे खजाने आपके लिए हैं। तो सबसे माला माल करने वाला बाबा ही है, और ऐसा साथी हमें मिला है। तालियां तो बजाओ भाई, बड़े भाग्य से हमें ऐसा साथी मिला है। और पांचवी बात, साथी उसको बनाना चाहते हैं जो अंत तक साथ निभाता है, बीच भंवर में हमें छोड़कर नहीं जाता है, ऐसा साथी लोग बनाना चाहते हैं। तो बाबा हमें अंत तक साथ देने वाले हैं, परम धाम घर तक नहीं, सतयुग भेजने तक साथ देने वाले हैं। तो ये दुनिया में तो सारे धोखे देने वाले ही है, कब साथ छोड़ देंगे, कब हमें धोखा देंगे, कोई पता नहीं है। इसलिए इन पांच बातों को हमें रियलाइज करना है और केवल बाबा को ही साथी बनाना है। क्योंकि सारे कल्प में केवल संगम युग में हमें चांस मिलता है बाबा को साथी बनाने का। तो बाबा को साथी अनुभव करने के लिए कौन सी बातों पर हमें पुरुषार्थ करते रहना जरूरी है? सबसे पहली बात, बाबा को सदा साथी अनुभव करने के लिए हमें आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास बढ़ाना होगा। आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास करते हैं तो अपने देह से साक्षी हो जाते हैं, और देह से साक्षी होते हैं तो बाबा के साथी हम अनुभव करते हैं। इसलिए कहते हैं जितना देह से न्यारा उतना बाबा का प्यारा, उतना ही जितना न्यारा। हमारे और बाबा के बीच में एक छोटी सी दीवार है देह भान की, उस दीवार को अगर हम हटा देते हैं तो बाबा के साथ कंबाइंड स्थिति की अनुभूति हमें होती है। बाबा को निरंतर साधी साथीपन की अनुभूति हम कर सकते हैं। इसलिए गुप्त ही गुप्त हमें देह में रहते हुए देह को साक्षी होकर देखने का अभ्यास बढ़ाना है। कभी कभी ऐसा अनुभव करे देह मेरा यहां पड़ा है और मैं बिंदु उससे बाहर निकलकर उसको दिव्य दृष्टि से साक्षी होकर देख रही हूं। ये देह मेरा साधन है, देह मेरा इंस्ट्रूमेंट है, ये देह मेरा मकान है। इस मकान में रहने वाला मालिक मैं आत्मा हूं, बिंदु स्थिति में स्थित होकर देह को साक्षी होकर देखें। तो इस अभ्यास से बाबा को साथी बहुत सहज रीति से हम अनुभव कर सकते हैं। लेकिन गुप्त ही गुप्त हमें यह अभ्यास बढ़ाना होगा। हमारा सबसे जास्ती प्यार किससे होता है, सोच के जवाब दो। हैं जी, सबसे जास्ती प्यार किससे होता है? बाबा से? बाबा से नहीं होता है, सच बताओ। हैं जी, अपने देह से। 24 घंटे आपके साथ कोई रहता है, कोई कितना भी समीप का आपका रिलेटिव हो, संबंधी हो, 2-4 घंटे 5-7 घंटे के लिए रहेगा, 24 घंटे में उस आत्मा के साथ रहने वाली ये मेरी देह है। इसलिए हमारा देह के साथ बहुत गहरा लगाव होता है। इस लगाव से हमें न्यारे रहना है। बॉडी की कंपनी ने हमें कौड़ी तुल्य बनाया और गॉड की कंपनी हमें हीरे तुल्य बनाने जा रही है। इसलिए हमें से जितना हो सके गॉड को साथी बनाकर रहना है। दूसरी बात, इस संसार से साक्षी होकर रहने के लिए, देहधारियों से साक्षी होकर रहने के लिए गुप्त ही गुप्त समान का अभ्यास हमें करते रहना है। जब समान का अभ्यास करते हैं, अपने मस्ती में रहते हैं, रूहानी नशे में रहते हैं, तो इस पुरानी दुनिया से डिटैच होकर रहते हैं। ऑटोमेटिक इस पुरानी दुनिया से उपराम होकर हम ऊपर जाने लगते हैं। मन और बुद्धि हमारी हल्की हो जाती है और ऊपर परम धाम की ओर जाने लगते हैं। तो गुप्त ही गुप्त ये समान का अभ्यास हमको बहुत बढ़ाना जरूरी है। आप देखेंगे बाबा के पास आने के बाद अगर आपको बहुत ऊंची स्थिति बनाना है, उसका सीक्रेट क्या है? कोई भी किसी क्षेत्र में बहुत ऊंचाइयों को छूता है, उसका कुछ सीक्रेट होता है। उस सीक्रेट के आधार से ही वो इतनी ऊंचाइयों को छूता है। ऐसे बाबा के पास आने के बाद अगर हमें बहुत ऊंची स्थिति, बहुत श्रेष्ठ स्थिति बनाना है, तो उसका राज क्या है? जो भी अच्छी स्थिति बनाकर ब्राह्मण संसार में चमक रहे हैं, प्रेरणा के स्रोत बन चुके हैं, उनसे अगर आप पूछेंगे आपने इतनी श्रेष्ठ स्थिति बनाई इसका क्या सीक्रेट है, जवाब एक ही मिलेगा आपको, बाबा के पास आने के बाद हमने आत्म अभिमानी स्थिति पर और सम्मान के अभ्यास को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया है, उस आधार पर ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाने में सफलता हमने पाई है। जैसे आत्मा की स्थिति का अभ्यास हमारा छूट जाता है, भूल जाते हैं, हमारी स्थिति नीचे आती है, और सम्मान का सिंहासन जैसे छोड़ते हैं वैसे स्थिति हमारी नीचे आ जाती है। लेकिन इन दोनों बातों पर हमारी बुद्धि की पकड़ होती है तो स्थिति बहुत ऊंची बनती जाती है और हम आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। तीसरी बात है, ऐसे साथीपन की अनुभूति को बढ़ाने के लिए बाबा के साथ हमारा अटूट प्यार बढ़ता रहे, जिगरी प्यार, हड्डी प्यार, सच्चा प्यार बाबा के साथ हमारा बढ़ता रहे। आप कहेंगे भाई हमारा बाबा से तो प्यार है इसलिए तो हम यहां बैठे हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है, लेकिन बाबा कहते हैं मुझे हड्डी प्यार चाहिए, सच्चा प्यार चाहिए, जिगरी प्यार चाहिए, क्योंकि ये रूहानी प्यार में इतनी ताकत है, ये रूहानी प्यार इतना शक्तिशाली है, जो बाबा में और हमारे हजारों मीलों की दूरी है उस दूरी को समाप्त करके एकदम कंबाइंड स्थिति की अनुभूति ये प्यार हमें कराता है। इसलिए बाबा के प्रति हमारा सच्चा प्यार बढ़ता रहे, इस पर हमें ध्यान देना है। प्यार के सागर के बच्चे हैं, सबके साथ प्यार से रहना है, किसी के साथ नफरत नहीं रखनी है, लेकिन आंतरिक प्यार, दिल का प्यार केवल उसके साथ हमें रखना है। किसी व्यक्ति, किसी वैभव के साथ हमें शेयर प्यार नहीं करना है। अगर किसी के साथ थोड़ा सा भी लगाव झुका है तो समझ लो ये ब्राह्मण जीवन में बड़ा विघ्न है। बाबा के प्रति जो प्यार हमें बढ़ाना है उसमें बाधा डालने वाली बात है। हमें चेक करना है कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा चीज, कोई ऐसा स्थान है जहां हमारी बुद्धि बार बार जाती है, वहां से चेक करके बुद्धि को हटाना है और बाबा के साथ जुटाना है। उसके लिए आवश्यकता है सारे दिन भर में बाबा के प्रति विभिन्न संबंधों का अनुभव करते रहना, क्योंकि संबंध ही हमें खींचते हैं। कोई ना कोई संबंध सूक्ष्म रीति से हमें अपने तरफ आकर्षित करता रहता है। और दूसरी बात, ट्रेन से जन्मों का पाठ बजाकर हम यहां बैठे हैं, हमारा कई आत्माओं के साथ पॉजिटिव, कई आत्माओं के साथ नेगेटिव अकाउंट है संबंधों के द्वारा, उसको भी हमने जीरो करना है। उसके लिए आवश्यक है बाबा के साथ विभिन्न संबंधों को अनुभव करते जाना। इसलिए सवेरे से लेकर रात्रि तक अलग अलग रूप से हमें बाबा को याद करना है। बिंदी समझकर बिंदी को बाबा को याद करते हैं तो थोड़ा समय के बाद उसमें हमारी रुचि कम होती है, कभी कभी बोर भी लगता है, रूखा सूखापन भी लगता है, उसमें रस की अनुभूति नहीं होती है। इसलिए संबंधों के माध्यम से अगर बाबा को याद करते हैं तो बाबा से वो प्राप्तियां ऑटोमेटिक हमें होती रहती हैं और बाबा के प्रति प्यार, लगन हमारी तार ऑटोमेटिक जुड़ती जाती हैं। हमें ऐसा अनुभव करना है, बाबा मेरे संसार है, इस संसार में रहते हुए मुझे बाबा को अपना संसार अनुभव करना है। लेकिन इसके पीछे है प्यार की शक्ति। तो बाबा के प्रति प्यार का परसेंटेज हमारा बढ़ता रहे। बाबा कहते हैं आपके पास है क्या, बेघर तो हो, बेघर, घर भी आपका नहीं है, किराए का मकान लेके रखा है, बेघर हो तो बेघर हो, क्या है आपके पास? केवल आपके पास दिल का सच्चे प्यार की पूंजी है, मैं उसका सौदा करने के लिए आया हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्यार का सौदा मुझसे आपको करना है। तो बाबा को हमें अपना जीवन साथी अनुभव करना है। सारे गीता का सार केवल दो शब्दों में बताते हैं, नष्ट मोहा और स्मृति लब्धा। ये जो स्थिति है उसका वर्णन इन दो शब्दों में किया जाता है, साक्षी और साथीपन के रूप में। साक्षी होना माना नष्ट मोहा बनना, स्मृति लब्धा अर्थात बाबा की याद में खो जाना, उसको कहते हैं साथी अनुभव करना। तो ये सारे ज्ञान का सार है। तो इसलिए हमें जितना हो सके इस दुनिया से उपराम रहना है। एक बात पक्की करना है, ऊपर उठना है, ऊपर उठना है तो ऊपर वाले का हाथ पकड़ना है, वही ऊपर उठाएगा, और कोई नहीं उठा सकता है। तो ऊपर वाले राम का हाथ पकड़ना है तो उपराम होना जरूरी है। जितना ऊपर आम होते हैं, ऊपर वाले राम का हाथ पकड़ते हैं, उनका साथ हम अनुभव करने लगते हैं। और जो भगवान का साथ अनुभव करता है उसको किसी चीज की कमी नहीं हो सकती। वो तो सागर है, गागर नहीं, सागर है। सात जो गुण आत्मा के हैं, उन सात गुणों के वो सागर हैं। सुख शांति प्रेम पवित्रता आनंद ज्ञान शक्ति के वो सागर हैं, सर्व खजानों के सागर हैं, प्राप्तियों के भंडार हैं। ऐसा साथी ऐसा दोस्त अगर हमें मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। तो हमारे जीवन से एक ही बात हमें अनुभव करना है, मैंने अपने जीवन रूपी डोर उसके हाथ में सौंप दी है, उसके साथ मैंने अपनी जीवन की रस्सी बांध दी है। और अंदर से हमेशा एक ही गीत बजता रहे, कौन सा हाँ जी, जीवन साथी साथ में रहना, जीवन साथी साथ में रहना, और नहीं कुछ तुमसे कहना, और नहीं कुछ तुमसे कहना, जीवन साथी हो, जीवन साथी साथ में रहना। ये गीत हमारे दिल से निकलता रहे। तो अभी अनुभव करेंगे सभी, ऐसा सुंदर अनुभव करेंगे अभी, तो हम पावरफुल योग का अनुभव करेंगे। सभी मांस थोड़ा सा निकाल दो अभी, छोड़ क्या बंधन, थोड़ा सा दूर दूर बैठे हैं ना, बस 10-15-20 मिनट के लिए आजाद बन जाओ, फ्री पंछी एकदम। सीधा बैठेंगे, टेका लेके नहीं बैठना है, क्योंकि ये टाइम थोड़ा सुस्ती का है। इसलिए ऐसा अनुभव करेंगे, 4 बजे अमृत वेले हम यहां बैठे हैं और बहुत सुंदर बाबा की याद में, अमृत सागर में खो गए हैं और अमृत शक्तियों का प्राशन कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करेंगे। ओम शांति। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा, बेगर टू प्रिंस बनने वाली आत्मा, इस शरीर रूपी घर में भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर आंखों रूपी खिड़कियों के पास विराजमान हूं। इस शरीर तो मैंने प्रकृति से लोन लिया है, ये मेरा मकान है, ये मेरा वस्त्र है, ये मेरा साधन है। मैं एक चमकता हुआ, धमकता हुआ दिव्य सितारा हूं, सात गुणों की चमक, मस दिव्य सितारे से चारों ओर फैल रहे हैं। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा, इस स्थूल शरीर को साक्षी होकर देख रही हूं। और इस पुरानी दुनिया को भी साक्षी होकर देख रही हूं। मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा के चहुओर दिव्य प्रकाश का सुंदर आभा मंडल अनुभव हो रहा है। सचमुच मैं कितनी न नसीबवान आत्मा हूं जो स्वयं के असली स्वरूप को, निराकारी स्वरूप को, दिव्य स्वरूप को दिव्य नेत्र से स्पष्ट देख रही हूं और अनुभव भी कर रही हूं। जैसे मेरे शिव पिता निराकार ज्योति बिंदु हैं, वैसे मैं आत्मा उनकी संतान भी निराकार ज्योति बिंदु हूं। मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा, इस देह रूपी मकान से न्यारी होकर बुद्धि रूपी विमान में बैठकर इस संसार को साक्षी होकर देखते हुए अपने
घर की ओर उड़ती हुई जा रही हूं, इस विश्व के गोले से पार, चंद्र सूर्य तारागण से भी पार उड़ती हुई जा रही हूं। फरिश्तों की नगरी में पहुंच गई हूं, जहां चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है, पवित्रता ही पवित्रता है, मस निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज के चमकीले फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी सुंदर हल्की फुल्की ड्रेस है यह, फरिश्तों के बादशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा, मेरे प्यारे अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा, अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है, मेरे सबसे प्रिय शिव बाबल भी उनके प्रकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाप दादा मुझ फरिश्ते को पर्सनली दृष्टि दे रहे हैं, प्रभु पालना में पलने वाली मैं कितनी महान आत्मा हूं, महान फरिश्ता हूं, बाबा की दृष्टि का आनंद ले रहा हूं, बाबा की दृष्टि से असीम शक्तियां और अथाह प्यार की अनुभूति हो रही है। बाबा की दृष्टि का आनंद लेते लेते मैं फरिश्ता बाबा की बाहों में लिपट चुका हूं। बाबा की बाहों में समा गया हूं, परम सुख की, परम आनंद की अनुभूति हो रही है। सिक्किल दे बच्चे हैं, मैं बेहद खुश हूं, मैंने अपना खोया हुआ लाल 5000 वर्षों बाद पाया है, मैं बेहद खुश हूं। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा पुनः बुद्धि रूपी विमान में बैठकर दिव्य ज्योति धाम की ओर उड़ रही हूं, जा रही हूं, जा रही हूं। ओहो, दूर देश में प्यारे घर परम धाम में पहुंच गई हूं, जहां चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल, सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है, शांति ही शांति, परम शांति है। कितना प्यारा घर है यह मेरा शांति धाम। मेरे जीवन साथी, मेरे प्राणों के प्राण, मेरे जीवन के आधार, सत्यम शिवम सुंदरम, प्यारे शिव बाबुल, मोज आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान है। मैं आत्मा बाबा की सुंदर छवि को दिव्य चक्षु से निहार रही हूं। सुंदरता के सागर को निहार रही हूं, उनकी सुंदरता का आनंद ले रही हूं, जी भर के देख रही हूं। बाबा, मैं इस भूल भलैया दुनिया में भटक रही थी, और हे रहम के सागर बाबा, आपने मुझे हाथ पकड़कर अपना बना दिया, अपना साथ दिया, श्रीमत का हाथ दिया। जो एहसान आपने मुझ पर किया कोई और नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं, हजारों सूर्यों से शक्तिशाली हैं। ज्ञान सूर्य से पिता से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की बरसात, मूसलाधार बरसात मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है। मैं आत्म ज्योति ज्ञान सूर्य से पिता से अनंत शक्तियां, असीम शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं। योग की अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो रहे हैं। इतने विशाल परम धाम में मैं आत्मा अपने जीवन साथी परमात्मा से महामिलन का आनंद ले रही हूं। सचमुच मेरे जीवन की ये सुनहरे पल है, खुशनुमे पल है, जो डायरेक्ट भगवान साथी के साथ मैं आत्मा स्वयं को अनुभव कर रही हूं। वार में वहां मेरे जीवन साथी बाबा, वहां मेरा भाग्य, मेरा भाग्य बुलंदियों पर है। सारे संसार को भाग्य बांटने वाला भाग्य विधाता मेरा साथी बन चुका है। संगम की हर घड़ी दिल ऐसा कहता है, संगम की हर घड़ी मैं अपने साथी के महिमा के गीतों की माला गाती रहूं, गुनगुनाती रहूं। उनके संग में, उनके ही रंग में रंगती रहूं। शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से बुद्धि रूपी विमान में बैठकर वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर वापिस आ रही हूं, और इस साकारी शरीर में प्रकृति के अकाल तख्त पर विराजमान हो चुकी हूं। मैं इस शरीर से साक्षी और भगवान की साथी बन चुकी हूं। भगवान की कंपनी में स्वयं को अनुभव कर रही हूं। डायरेक्ट परम धाम से, ज्ञान सूर्य शिव पिता से, शक्तियों के किरणों का फाउंटेन मौज आत्म ज्योति पर हो पड़ रहा है। मैं आत्म ज्योति शक्तियों के फाउंटेन के नीचे नहा रही हूं। शक्तियों से भरपूर हो रही हूं। मेरे ब्रकुटी में मस्तक मणि आत्मा चमक रही है। भगवान की शक्तियों की प्राप्ति से शक्तियों की किरणें मुझ मस्तक मणि आत्मा से चारों ओर फैल रही है। मैं लाइट हाउस स्वयं को आत्मा अनुभव कर रही हूं। दिव्यता की लाइट और शक्तियों की माइट चारों ओर मुझ लाइट हाउस आत्मा से फैल रही है। संसार में मेरा अस्तित्व केवल एक चमकते हुए दमकते हुए आत्म ज्योति के रूप में ही है। मैं आत्मा जीरो और इस संसार में हीरो पाठधारी हूं। ड्रामा के डायरेक्टर के साथ मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है। हर रोज उनसे मुझे मुरली में श्रीमत का डायरेक्शन मिलता है, जिससे मेरा जीवन श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनता जा रहा है। शांति।